چلتے ہیں لفظ کافہ پہ. کافہ کا روٹ ہے کافافہ, کافی اردو میں بولتے ہیں نا کفن. آپ کو پتا کف کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے آپ میرا ہاتھ دیکھیے, یہ کیا کہتے ہیں ہم؟ کف, یہی چیز ہوتی ہے. یہ جو پونچی ہوتی ہے نا, یہ جگہ جہاں عموماً کف لگایا جاتا ہے یا چوڑی پہنی جاتی ہے, تو پونچھے تک, پونچی جگہ کہتے ہیں اس کو, پونچی تک ہاتھ کو کہتے ہیں, کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنی مدافعت کرتا ہے. دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز آئے گی نا, سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ آگے لائیں گے, ایسے کرتے ہیں. اب لفظ کافہ کو سمجھیں گے تو آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ, کہ انسان کو جب کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے نا, تو بندے کا ہاتھ ہی سب سے پہلے آگے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کففتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے اسے اس بات سے روک دیا, ہٹا دیا, موڑ دیا. فکفہ ہوا, پس وہ رک گیا. تو اس کا جو کافہ کا اصل معنی ہے نا, وہ ہے پکڑنا اور سکڑنا. ہاتھ کو کف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے. الکفہ تو کہتے ہیں کسی چیز کے آخری کنارے کو, جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی کو پھر کفاف و شئی کہتے ہیں. کفتن کہتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے یا بازو کو, دو ہوتے ہیں نا اس میں بیلنس, ایک طرف آپ چیزیں ڈالتے ہیں ایک طرف وزن ڈالتے ہیں, تو ایک پلڑے کو کفہ کہتے ہیں. اب لکھئے کافتن کیا ہے, اس چیز کو کافہ کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کی انتہا تک لے جا کر روک دے, بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا فائنل اینڈ. لوگ کہتے ہیں آپ کی شوگر کنارے پہ ہے, یعنی اب اگر آپ نے ذرا سی بے ترتیبی کی تو آپ شوگر پیشنٹ ہو جائیں گے. سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكَ كَافَّةً, کہ مشرقین سے ایسی جنگ کرو جو ان کو ظلم و ستم سے روک دے, جیسے وہ تم سے مل کے لڑتے ہیں تم بھی اسی طرح سے لڑو. تو کافتن سے مراد کیا ہے؟ پورے کے پورے چلے جاؤ, ہر طرح سے چلے. دیکھو دو معنی اس کے کافہ کے, تم سب چلے جاؤ, یہ نہیں کہ تمہاری سوسائٹی میں کلاسیفیکیشن ہو, یہ شیوخ ہیں, یہ حفاظ ہیں, اور یہ مفتیز ہیں, اور یہ گناہگاران ہیں, اور عام تو ہیں ہی نرے جہنمی. نہیں, ساری امت مسلمہ ایک یونٹی میں آ جائے, جیسے وہ کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. ایک معنی یہ ہے, سب آؤ. یہ اسلام صرف مفتیوں کا نہیں ہے, حافظ قرآن کا یہ اسلام نہیں ہے, تم سب کو اس کے اندر آنا ہوگا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ پورے اسلام میں آنا پڑے گا. دیکھیے ایک کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کا اصل نا کافہ کی ساؤنڈ سے بھی تعلق ہے. آپ کہتے ہیں آپ سب آ جائیں, اور دوسرا کہ سب آ جائیں آل ٹوگیدر. یہ جب کہتے ہیں نا آل, اب یہ ساؤنڈ سے ہے نا. بچہ باپ سے کہتا ہے کیا لے کے آؤں, تو باپ کہتا ہے برنگ ایوری تھنگ. تو یہ جو ایوری ہے نا, یہ کاف ہے. ڈونٹ ہیزیٹینٹ, بالکل بھی ادھر ادھر نہ ہو جاؤ, پورے کے پورے اور پوری کی پوری چیز میں آ جاؤ. اسلام آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے, کہ تم اسلام میں وہاں تک پہنچ جاؤ جہاں تک اس کی حدود ہے, انتہا تک پہنچ جاؤ. اپنا گول سیٹ کرو, یہ نہ کرو بس پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتی بہت ہے, نہیں. کافہ فرض, پھر سنتیں, سنتیں پڑھتے ہو تو اب نفل, نفل ہے تو تہجد, تہجد ہے تو کچھ اور, یعنی آخری حدوں تک پہنچو, تھوڑا سا چل کے رک نہ جاؤ. اچھا کافہ کا ایک معنی جماعت ان بھی ہوتا ہے, جماعت جمع ہونا, اجتماعی طور پہ مراد ہے. اسی طرح اس کے معنی میں روکنے یا حد کا بھی معنی ہوتا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم سب پورے ہو جاؤ. اور کیا نہ کرو, ولا اور نہ, واؤ کیا ہے بولیں گے؟ اور آپ کو تو لفظ واؤ کے عربی زبان میں کتنے مختلف معنی, آج نہیں دوں گی کیونکہ آج بہت سارے پہلے ہی ہو گئے ہیں, انشاءاللہ آگے جہاں موقع ہوا آیتوں میں آٹھ مختلف معنی ہوتے ہیں, بس یہاں جو ہے وہ لے لیں واؤ اور. اور کے معنوں میں جب واؤ آتا ہے اینڈ, دو کے بیچ میں آتی ہے چیز, ٹھیک ہے. پورے کے پورے اسلام میں ہو جو, اور لا نہیں, لا کا معنی آپ کو پہلے بہت دفعہ بتا دیے, سمپل ہے لا, لیسا نہیں, وہی بات ہے جیسے نو, نو ناٹ. یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ ڈونٹ, نہیں ہے, یہ حرف نہیں. لا تدرب, مت مارو, ٹھیک ہے, بچوں کو سارا دن یہی کچھ کہتے ہوں گے, تو نفی جنس ہے. چلیے ولا تتبیو, تتبیو کا لفظ پیچھے کئی دفعہ گزرا آپ کے سامنے, تبیا اتبا پیچھے پیچھے چلنا, बकरतुन मुत्तबेउन उस गाय को कहते हैं जिसका बच्चा उसके पीछे पीछे रहता हो, और इसके पीछे चलने वाले बछड़े को, वो जो बेबी होता है ना, आप कहते हैं गाय के बच्चे की क्या आदत है, जो ही पैदा होता है ना, जरा सी उसमें जान आती है ना, तो उठ के खड़ा होना शुरू हो जाता है, तो माँ के पीछे रहता है, तो उसको मुत्तबे कहते हैं। तो तबियु पीछे चलने वाला, ताबे उनकी जमा भी है। तो यहां क्या पता चला, अकल ना इस्तेमाल करो, फुट स्टेप पे चलो। देखिए तत्तबियु के लफ्ज में लिखा हुआ है, ये लिखे जुमला, वला तत्तबियु और ना पीछे चलो, यही लफ्ज है जो इत्तबाए सुन्नत में भी आता है, वहां बिल्कुल अपोजिट मानी है। एक होती है इताअत रसूल की, जो अल्लाह के नबी कहें वो कर लो खुशी से, एक होता है इत्तबा, कहा भी नहीं, वो उनको करता देखा तो कर लो। यहां क्या है, ला तत्तबियु, बे सोचे समझे ना चलो, यहां ये मुराद है, अकल इस्तेमाल करो। जब शैतानी हुक्म आए, कोई शैतान का पैसेज तुम्हारे पास आए, तो ला तत्तबियु, अकल इस्तेमाल करो, होश इस्तेमाल करो, और किधर ना जाओ, ला तत्तबियु खुतुवात शैतान। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात बता दी अल्लाह सुबहाना ताला ने कि तुम शैतान के कदमों के पीछे ना चलो। ये जो लफ्ज है ना खुतुवात, पहले इसको समझे फिर इत्तबा समझ आएगा। खुतवतुन कहते हैं वो फासला जो दो कदमों के दरमियान हो। आप चलते हैं ना यूं, फिर अगला पाँव दूसरा आगे, वो तो आप जॉगिंग तो नहीं कर रहे होते ना कि दोनों पाँव इकट्ठे रखे, एक कदम, जैसे आप अगर मेरे हाथों को देखें तो आप देखिए कि आप यूं चलते हैं ना, मैं भी, हम ऐसे ही चलते हैं, यूं फिर यूं फिर यूं। अब मैं एक पाँव मेरा ये है, तो दूसरा मैं कटक यहां तो नहीं रखती ना, यहां रखती हूं, तो ये जो फासला है ना एक कदम से दूसरे कदम के बीच का फासला, इसको खुतवतुन कहते हैं। इतनी मिकदार को खुतवा कहते हैं जो दोनों कदमों के दरमियान की मुसाफत है, ठीक है। खुतवात खुतवतुन की जमा है, और खुतवात से मुराद कदम भी होते हैं, कदम यानी जैसे आप फुटस्टेप्स कहते हैं। अब यहां आगे लफ्ज क्या है, शैतान, खुतवाते शैतान से क्या मुराद है, सरकश कुव्वतों के हाथों में तरने वाला ना बनो। जाहिर तौर पे मुझे आपको शैतान नजर तो नहीं आता, तो यहां खुतवाते शैतान से मुराद है कि मुफाद परस्त लोग जो इस्लाम की बुनियादों को ढाना चाहते हैं उनके पीछे ना हो। खतर रजुलू यहतू कहते हैं अरब लोग, उस आदमी ने चलने के लिए कदम बढ़ाया, इसीलिए तखत्तियतहू कहते हैं मैं इसे फांद कर इसे आगे बढ़ गया। तो फिर बात का खुलासा क्या निकला कि शैतान के कदमों पे ना चलो। शैतान के लफ्ज को पीछे भी किया हुआ है, आगे जरा मजीद करूंगी। एक छोटी सी चीज शैतान लफ्ज के लिए आज नोट करें, जिससे आपको इसका मफहूम और अच्छा समझ आएगा। शतन कहते हैं लंबी रस्सी को, मजबूत रस्सी को। पीछे आपको और मानी बताए ना शैतान के, गहरा कुआं और मायूस, बेरे मशतून कहते हैं वो कुआं जो बहुत गहरा हो। यहां क्या, शतनुन मजबूत बटी हुई लंबी रस्सी, समझ आ रहा है ये क्या है। शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी है कि इंसान को गुमराह कर सके। शैतान इंसान की जिंदगी में ऐसे मामले लेकर आता है कि जिसकी वजह से बंदा खुद को अल्लाह से दूर कर लेता है। तो मजबूत लंबी हुई रस्सी से यहां जोड़ लीजिए, वला तत्तबियु खुतवात शैतान, के शैतान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा ना बनो। अभी तफसीर पे थोड़ी सी मजीद आपको बात समझाऊं की कोशिश करती हूँ, आगे चलिएगा। इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन, बेशक वो कौन, शैतान। शैतान खुद कौन है, अल्लाह की रहमत से मायूस है, उसकी जिंदगी में खुशी कोई नहीं है, सीधी राह को गलत रास्ते पे लेके चलने वाला। बदसूरत सांप को भी शैतान कहते हैं, आपको पता है। आगे हम पढ़ेंगे रूस शयातीन, वो जो कोबरा सांप नहीं होता, फन फन आपने सुना होगा, चौड़े से गोल से मुंह का सांप जो होते हैं ना, उसको भी शैतान कहते हैं। तो शैतान जो है ना ये असल में कौन है, इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन, ये खुद भी भटका और तुम्हें भी भटकाएगा। अदुव लफ्ज जो है ना, अदुव आइन दाल वाव से है, अजनबी लोग जो एक दूसरे से अलग हो। असल में अदुव लफ्ज में ना दूरी है, दुश्मन से बंदा दूर होना चाहता है। अलएदा कहते हैं वो लकड़ी जो दो लकड़ियों के दरमियान दे दी जाती है, एक लकड़ी यूं एक इधर एक आड़ी बीच में रख दी जाती है ताकि दोनों आपस में ना मिले। तो फिर अदूब कौन हुआ कि जिसको आपके करीब नहीं होना। आपको तो अदूब का ऑपोजिट क्या है, पीछे भी बताया था, सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक। तो सिद्दीक जो है ना वो अदूब नहीं होगा कभी भी, और जो अदूब है वो कभी आपका सिद्दीक नहीं बनेगा, वली की भी जिद बनती है। अब यहां देखिए, नहुलकुम अदूब वो मुबीन, मुबीन क्या है, बयिन से। बयिन क्या होता है, बयान करना, क्लियर। उर्दू में भी ये लफ्ज हम बोलते हैं, बा या नून इसका रूट है, मीम रूट की नहीं है। जुदाई, अलग अलग करना, मुतजाद के मानों में दो चीजों को अलग करने वाली चीज। ये कैसे खुला है और ये क्या है कि इसकी दुश्मनी तो आजमाई हुई है, क्योंकि इसने तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को जन्नत से निकलवा दिया था, तुम्हें बहका दिया था। अब आप इस एक आयत की सिर्फ लफ्जी वजाहत के बाद क्या इस आयत का मजमून समझे? बिल्कुल समझ आ गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा। और आज आपको इसका फर्क बताऊंगी अगले हिस्से के साथ। ए लोगो, जी मान लाए हो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, नो प्रॉब्लम। यहां तक बात ठीक होती है। शैतान आपको मुझे इस्लाम में दाखिल होने से नहीं रोकता। किस चीज से रोकता है? पूरा इस्लाम में आने से रोकता है। मैं और आप आज जिस टाइम इरा में रह रहे हैं ना, आज के दौर के मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पूरे नहीं दाखिल हो सकते। कुछ तो मेरी भी चलेगी, ठीक है तहज्जुदे पढ़ता हूँ, देखो रमजान में उमरा किया, देखो ताक रात भी नसीब हो गई, देखो मस्जिद का कारपेट भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अक्सर मस्जिद में भी तुम मुझे देखते हो, बस दैट्स फाइन। अब रह गई बात खुशी, शादी, मौका, जिंदगी, ये वो, फिर कुछ तो फिर अपनी भी चले ना। देखिए अंदर आना है, आज छोटा बच्चा भी अपनी बात मनवाता है, आप उसकी मर्जी की बात करेंगे ना तो वो पांव पटकेगा। जितना सेल्फ प्रेजिंग कल्चर है ना, उतना ज्यादा एक बंदा अपने आप को भी कहता है अल्लाह के मुकाबले में कुछ मेरी भी मानो। याद रखिएगा, जो अल्लाह के आगे आजिज नहीं है ना, वो बंदों के आगे आजिज भी नहीं होगा। आज इंसान को शैतान ये एहसास दिलाता है कि देखो पूरे नहीं बन सकते। आज आप अक्सर कहते हैं, सुनते हैं, आज के दौर में कौन सा वक्त है जी सारा इस्लाम लेने का, लो भला आज के दौर में कोई सूद से बच सकता है, लो अब आज पर्दा करें, लो आज कोई दाढ़ी का दौर है। ये है असल में प्रॉब्लम। पीछे आपको मुझे अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में यहूद के तनाजर में एक आयत बताई थी, किसी को याद हो तो मुझे खुशी होगी, आयत 85 है। यहूद को क्या कहा था, एक कमेंट दिया था, अफतू मेनू नबी बाद दिल किताबी व तकफुरू नबी बाद। क्या तुम दीन के किताब के कुछ हिस्से पे ईमान लाते हो, कुछ पे नहीं लाते? चलो फिर फमा जजाओ मैं यफलुजालिका मिनकुम इल्ला खिज्यन फिल हयात दुनिया। जो भी ये कुछ करेगा फिर उसको दुनिया में तो आखिरत में रुसवाई ही मिलेगी। उनको बता दी कि तुम्हारी आज की तबाही की वजह यह है कि तुमने किताब को छोड़ा नहीं। वहां नेगेटिविटी थी, तनकीद लग रही है, क्रिटिसिज्म है, यहां मुस्बत तरीके से मुसलमानों को पहले ही कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। रिवर्जन नहीं होनी चाहिए। रिवर्जन क्या होती है? गुस्सा, बच्चे से कहेंगे इधर आओ, आ भी जाएगा लेकिन आपको उसके कदम उठाने से भी लग रहा होगा इसको गुस्सा है, पानी दो, पानी रखने के अंदाज से पता चल जाएगा गुस्सा है, तो रिवर्जन छोड़ो, एक्सेप्शंस भी छोड़ो। ये तर्ज अमल ना हो कि अल्लाह की बंदगी करनी है मगर फला मामले में नहीं करनी। हुक्म तो अल्लाह का मानना है लेकिन उसको हाकिम नहीं मानना। और शैतान का धोखा ही है, वो कहता है तुम्हें पूरी इताअत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बचा लूंगा तुम्हें, एंड टाइम पे मैं आऊंगा वहां, और सूरत इब्राहिम में आप पढ़ेंगे, वहां जाके गगा मैंने कब कहा था मैं आऊंगा, ना मानते, मैंने को मजबूर थोड़ी किया था। आज अगर आप देखें तो हम मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान इस किताब की ऑपोजिट तस्वीर नजर आते हैं, और छोटी छोटी बातों पे हम इस्लाम से निकल जाते हैं। सूरत यूसुफ में आप पढ़ेंगे, वमा यूमिनु बिल्लाही अक्सरहुम इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह पर ईमान लाने वाले अक्सर लोग मुशरिक हैं। या जब मैंने पहली दफा आयत पढ़ी थी मैं कांप के रह गई थी, अल्लाह मुसलमान भी मुशरिक हो सकता है? हाँ, हुक्म में मुश्तरिक है, जिंदगी पूरी नहीं गुजारनी। इबादत अल्लाह की मर्जी की, मुआशरत लोगों की मर्जी की। आज का ये फलसफा। दीन अल्लाह से सीख लो, दीनदारों से सीख लो, तिजारत बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, शादी माशरे से सीखो, रस्में इंडियन फिल्मों से देखो, पहनना ओढ़ना है तो ब्रांडेड ज़रा बड़े बड़े लोगों को देखो। मैं अल्लाह के आगे अपने आप को इस मामले में सुरखरू महसूस करती हूँ वल्लाही, ईमान के नाते से, कि आज इस एक आयत को ओवरलुक करने की वजह से हम परेशान हैं। पूरी दुनिया पे मुसलमानों की जो हालत है, जो हरकतें हैं, उसकी वजह क्या है कि हम मुसलमान पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते हैं। आप देखिए कि पूरा दाखिल होने में क्या है। अभी आपको मैंने 8 मानी लिखाए हैं फिस इल्म के। आप किसी के घर जाएं, दरवाजे में ही बात कर ले, अंदर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, खतरा है आपसे, पता नहीं आप मुझे अंदर बुला के मार ही ना दें। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके ड्राइंग रूम में चलती हूँ, लेकिन शर्त है एक, मेरा बॉडीगार्ड पीछे साथ रहेगा। क्या मतलब है? हमने आपको मारना है? पता नहीं ना। अब मुझे बताएं, आपके घर कोई आए और वो अपना बॉडीगार्ड अपने साथ अंदर लाए, आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे आपको हम पे इतना ही इत्मार है। अब जब हम अल्लाह के दीन में आते हैं ना, अकल के बॉडीगार्ड को साथ लेकर आते हैं। करूंगी, पहले जरा अकल का बॉडीगार्ड बता दे कि इट इज सिक्योर, मेरा कोई नुकसान तो नहीं है, मेरा कोई इसमें खतरा तो नहीं है। ये जो आप इफ्स एंड बट्स लेकर इस्लाम में आते हैं, अल्लाह कहता है किक आउट, मुझे नहीं चाहिए। और आप नोट कीजिएगा, अंदर पहुंचना, मिडल में पहुंचना ही तो असल टेस्ट है। चीजों का सबसे मजे का हिस्सा कौन सा होता है? पिज्जा, अंदर का मजा। किनारे रोटी के भी सख्त होते हैं, कीमे वाली रोटी बनाते हैं, सबसे टेस्टी कहां से होती है? अंदर। मुझे रहम आता है ऐसे मुसलमानों पे। हम तो आजकल घिरे हुए ऐसे मुसलमानों से कि जिनको इस्लाम सख्त लगता है, रबिश लगता है, अनप्रैक्टिकेबल लगता है, क्योंकि वो किनारों से देख रहे हैं, डर रहे हैं ना, अंदर नहीं आना चाहते। मैं कहती हूँ दुनिया में सिर्फ दो लोग दुनिया की जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, ओनली टू पीपल। एक जो पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उनकी पूरी जिंदगी जीना मरना इस तरह, वही बातें, मैं यश्री नफ्सा उब्तिगा मर्दातिल्लाह, पूरा फोकस्ड। अल्लाह को भी यकीन है, फरिश्तों ये मेरा ही बंदा है, इसको जहां भी आजमाओगे इसे मेरे मुकाबले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रिश्तों में, दोस्तियों में, खाने में, पीने पे, मोहब्बत पे, नमाज के वक्त पे, बच्चों की शादी पे, फैसले करने में ये नहीं हिलेगा। फिर अल्लाह उसको ज्यादा क्रिटिकली नहीं देखता, वो उसका बंदा अल्लाह का बंदा होता है, वो एंजॉय कर रहा है। आज भी वो नेक लोग दीन के साथ दुनिया को रख के चल रहे हैं, उनकी जिंदगी ला खौफ अलैहि वलहुम यहसनून, ना उनको लोगों की परवाह ना बातों की परवाह। या फिर वो एंजॉय करता है जो पूरे का पूरा मिडल में पहुंच कर गुनाह को आजमा रहा है, वो कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, वो मजा कर रहा है। ये जो बीच वाले हैं ना, हम जैसे करकरा, हमारा मजा क्या है? हम यहां आते हैं तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है, मस्जिद में खुतबा सुनने जाएंगे बहुत इंजॉय करेंगे, शादी में जाएंगे तो हम कहेंगे वाह ये कौन सा इस्लाम है, शादी तो बड़ी दूर की बात है, एक पार्टी, एक दावत। आप सिर्फ यहां से निकलकर बस स्टैंड तक जाएं, आपको 10 चीजें रास्ते में नागवारियत के साथ देखनी पड़ेंगी। ये मसला है। और याद रखिए, किनारों वाले डूब जाते हैं। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत हज में यह आयत आएगी कि वमिन नास मै याबुदुल्लाह अला हरफिन, बंदों में एक ऐसा जो किनारे पे इबादत कर रहा है, सिक्योरिटी होती है। अच्छा किनारे पे क्यों रहता है बंदा? कोई बात नहीं, मसला आप देखिए ना, आप इस हॉल में आते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आप में से जो आके बिल्कुल ऐसे पोर्शन में इस रूम के बैठे जहां आई कॉन्टेक्ट भी अच्छा, बाहर नजर भी नहीं पड़ती, सेलफोन भी बंद, वो तो खो जाएगा, उसको मजा आएगा ना। लेकिन मसला एक ये है कि उसकी फिर हर हरकत भी नोट होगी, वो उठ के जा नहीं सकता बीच में, बार बार सब देखेंगे, सेलफोन नहीं उठा सकता, टेक नहीं लगा सकता, उसको पोज करना पड़ता है कि मैं इस माहौल का हिस्सा हूं। इसके बरक्स वो बिल्कुल किनारे पर, मैं आपको नहीं कह रही जो इस वक्त वहां बैठे हुए, लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूं। अब दरवाजे में कोई खड़ा हो जाए, क्या जरा देखते अंदर क्या हो रहा है, अंदर देखेंगे तो क्या होगा, अच्छी चीज लगी तो आ जाएंगे, उनको मुश्किल हुई तो निकल जाएंगे, सेलफोन भी साथ चेक कर लेंगे, मैसेज भी देख लेंगे। किनारे वाला अपने आप को सिक्योर फील कर रहा होता है कि मैं इधर का फायदा भी लूंगा उधर का, लेकिन असल में आपको पता क्या होता है, वो अंदर के माहौल को एंजॉय ही नहीं कर पाता। अंदर बैठा जिसको वाकई पूरा 100% मिल रहा है ना, उसको तो याद ही नहीं रहेगा वॉशरूम जाना, उसको तो फोन तो बड़ी दूर की बात है, उसको जाती जरूरतें भी नहीं याद रहेंगी। लेकिन जो किनारे पे ना, अब उसको बाहर से शोर भी आ सकता है ना, अंदर से कुछ बातें अच्छी भी मिल रही है, बाहर की बातें डिस्ट्रैक्ट कर, उसका फोकस नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को द बेस्ट प्लेस पे बिठाएं, कहीं भी जाएं, क्योंकि इससे माहौल का असर पड़ता है। करीब बैठने वाले दूर से बैठने वालों से ज्यादा लेते हैं, ये मैं आपको पूरे ईमान के साथ कह सकती हूँ, मैं भी इन रस्तों से गुजरी हुई हूँ। आपका क्लासरूम में आना, वक्त पे आना, वक्त से पहले यहाँ बैठना और चलती क्लास में आना, जमीन आसमान का फर्क है। घर से जेनी तैयारी के साथ आना और यहाँ आकर बस इस तरह कहना कि चलो अब जो भी होता है, हर चीज का फर्क है। और मैंने देखा है कि अधूरे दिल वाले ज्यादा दूर नहीं जाते, ये अल्लाह की कोई एक प्रोटेक्शन प्लान है। वही लोग इस कुरान के साथ जुड़े और जमे रहते हैं जो पूरे होल हार्टेडली आते हैं। कहीं भी क्लास की मिसाल ले लें तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आप वही काम एंड तक करेंगे जो आप पूरे दिल से करेंगे। चेक करती हूँ कैसा चलता है कोर्स, नहीं अभी मैंने किताबें नहीं लेनी, जरा मैं एक हफ्ता चेक कर लूँ। मान लीजिए आप 2 हफ्ते बाद नहीं आएंगे, मैं आपको कहूँगी आप नहीं आएंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि आपने अभी किताब ले के पढ़ने का मजा ही नहीं चखा। आप कहते हैं नहीं मैंने अभी यूनिफॉर्म नहीं लेना, पता नहीं छोड़ दिया कोर्स तो फिर स्कार्फ पता नहीं जाया ना हो जाए, तो फिर आप छोड़ देंगे। 100% तैयारी करके आने वालों को ही फायदा होता है। फिर आप देखिए बड़ी सी कश्ती जहन में आती है, मेरे इस आयत के साथ ही हमेशा ही आती है, पता नहीं क्यों कश्ती से डर लगता है लोगों को। आप देखें जब कश्ती डोलती है ना, या यूं डोलेगी या यूं डोलेगी, जो इधर वाला पहला है या इधर वाला है ना, उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। बोला इधर कश्ती डोली वो कह घाय मैं मर गया, इधर डोलेगी तो कहेगा मैं मर गया। तो बीच वाले को ना इधर का फर्क पड़ता है ना इधर का। आप जहाज की सीट अगर चूज करें ना, मैं आपको सच बताऊं द बेस्ट एंड सेफेस्ट एरिया ऑफ द जहाज के ना वो मिडल होता है। मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है, कभी पीछे वो नोक में टेल में जगह मिल जाए, सारा वक्त जहाज जो है ना वो कांपता ही रहता है, पीछे से ऐसे से कांपता है। आगे बैठे या मिडल में बैठे, आपकी फ्लाइट हमवार होगी। दीन अल्लाह का है, पहली बात है ट्रस्ट। देखिए शुरू से सुबह से जो बात हम कर रहे हैं ना लेसन के साथ, फर्स्ट थिंग डिवेलप योर ट्रस्ट। जब तक अल्लाह के साथ मेरा आपका ट्रस्ट डिवेलप नहीं होगा, आगे बात नहीं बनेगी। तुम जाते हो तो जाओ, अल्लाह को क्या लगे। आप कहते नहीं, वो कहते ना अकल के अकल दिल के साथ रहे अच्छी चीज होती है, पर कभी कभी इसको अकेला भी छोड़ो। ये किया तो ये होगा, हाँ दिल तो बड़ा करता है पर फिर बच्ची का रिश्ता नहीं होगा। फिर हिजाब और निकाब, उफ माय गुडनेस, निकाब नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा, दिल बड़ा वैसे करता है कि मेरी बच्ची को कोई देखे ना। अल्लाह कहते पहले इस सब को खत्म करो, आपको क्या होना ही रिश्ता सबसे अच्छा तब है जब ये अल्लाह की मर्जी की बनेगी। मैं कहती हूँ हमारे ईमान इस काबिल हो जाए ना, हम अपने मर्दों को मजबूर कर दें हलाल कमाने पे। पहले बताएं क्या चीज़ है अंदर, कहीं सूद का कोई बच्चा तो नहीं अंदर बैठा हुआ, कोई हेरा फेरी तो नहीं है, कोई इस्लाम के हुक्म के खिलाफ तो नहीं है। आपके तो हजरत उमर के दौर में कोई तिजारत नहीं कर सकता था जब तक वो किताबुल बियू नहीं पढ़ लेता था, हदीस में से कि नबी की हिदायतों के बगैर कोर्स किए बगैर तुम कैसे तिजारत कर लोगे। आज हम छोटी छोटी बातों पे, और इतने कीड़े हैं वल्लाही, इतने कीड़े हैं अंदर आज मुसलमानों के। मुझे कड़वी बात करने को दिल तो नहीं कर आज, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत की ग्लासेस लगा के मैं और आप जरा एक चक्कर तो सोसाइटी का लगा के आए, उबकाई आती हैं, वॉमिट होता है और तरस आता है लोगों पे, और खुशी फिर नहीं मिलती। आज वो जो ईमान के मानी पड़े हैं ना, आज वो कहाँ है सुकून? क्या आज अमने आलम के पयाम्बर मुसलमान को खुद भी सुकून है? आज हमारे घरों में सुकून है? अफरा तफरियां नहीं पड़ी हुई? तो फिर सारी बात का खुलासा, कुछ लोगों की जेब में एक डॉलर भी नहीं होता, लेकिन आप जरा उनके चेहरे की ताजगी, उनकी खुशियां तो देखिए, और कुछ की जेबें भरी पड़ी हैं लेकिन हौका ही नहीं जाता कि हाय इकोनॉमी डूब गई तो वो तो घर ही डूब जाना है और वो फैक्ट्री चली जानी है, और वो डॉलर के साथ साथ उनके दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है। तो सारी बात का खुलासा यह है कि मुझे आपको दी बेस्ट टारगेट बनाना है अपने लिए। अगर ये बन गया इंजॉय करेंगे। और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि एक लम्हे के लिए जन्नत को पीछे कर दो, इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए ट्रायल पे इस शिकायत पे आ जाओ, अपने आप को टाइम दें 1 महीना। हर एक को पता होती, मुझे भी पता है, सच्ची बात है, मैं आपको ना बताऊं लेकिन मुझे पता है मेरे में क्या कमी है, आपको भी बताऊंगी। ये अलग बात है शऊर ना रखें और कहीं भोले बन गए कुछ भी नहीं है, अदरवाइज वी नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस। 1 महीने का टाइम ले लें सिर्फ कि अल्लाह जी मैं एक ट्रायल बेस पे आपकी पूरी बन के आती हूँ, मैं कहती हूँ जो खुशी और जो सुकून आपको मिलना है ना, उसके बाद आप इसको छोड़ते नहीं है।
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين